एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज की ज्ञान गोष्ठी में मैं आपकी मेजबान हाजिर हूँ
और मैं भी हूँ आपके साथ। नमस्कार।
आज हम एक गाइड बुक पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी किताब है जो एक दूसरी बहुत मशहूर लेकिन उतनी ही मुश्किल समझी जाने वाली किताब को समझने में मदद करती है।
हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ चुनारा की किताब ए रीडर्स गाइड टू मार्क्सिस कैपिटल के।
बिल्कुल। और ये गाइड है कार्ल मार्क्स की वो जबरदस्त किताब दास कैपिटल के लिए।
जी। और देखिए, सवाल उठ सकता है कि भाई कोई 150 साल पुरानी किताब आज के जमाने में क्या मतलब है इसका।
हाँ, दुनिया तो बहुत बदल गई है।
बिल्कुल। लेकिन चुनारा की ये गाइड यही समझाती है कि मार्क्स आज भी शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक क्यों है। सोचे ना, 2008 का वो जो बड़ा आर्थिक संकट आया था,
हाँ, वो तो था ही।
या फिर आजकल हम जो देख रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच ये खाई बढ़ती जा रही है। इन सब को समझने के लिए मार्क्स के जो विचार हैं वो एक अलग ही नजर देते हैं।
बिल्कुल। पर ये मानना पड़ेगा कि कैपिटल अपने आप में पढ़ना वो आसान काम नहीं है। भाषा मुश्किल है, कॉन्सेप्ट्स भी गहरे हैं।
सही कहा। और ठीक यहीं पर चुनारा की ये गाइड काम आती है। इसका मकसद ही यही है कि मार्क्स के जो मुश्किल तर्क है ना,
हाँ,
उनको आसान भाषा में समझाया जाए और आज की दुनिया से जोड़ा जाए।
ताकि कोई भी समझ सके, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स।
हाँ, या कोई भी आम इंसान जो बस दुनिया को, अर्थव्यवस्था को समझना चाहता है। चुनारा की गाइड एक तरह से कैपिटल के घने जंगल में एक मैप की तरह है, रास्ता दिखाती है।
वाह, तो चलिए पहले इस मैप बनाने वाले के बारे में जानते हैं। लेखक हैं जोसेफ चुनारा।
जी।
ये ब्रिटेन के हैं, अकेडमिक हैं, लिखते हैं और समाजवादी एक्टिविस्ट भी हैं। सोशल साइंस में पीएचडी है, लेक्चरर रहे हैं, तो जाहिर है कैपिटल जैसी भारी भरकम किताब को समझने समझाने की अकेडमिक काबिलियत तो है ही।
हाँ, वो तो है। लेकिन जो बात उन्हें इस गाइड के लिए खास बनाती है वो है उनका, आप कह सकते हैं, दोहरा नजरिया।
दोहरा नजरिया मतलब?
मतलब वो सिर्फ एक गंभीर स्कॉलर नहीं है, वो एक एक्टिविस्ट भी हैं। ब्रिटेन में सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के सदस्य रहे हैं।
अच्छा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मार्क्स को सिर्फ एक किताबी थ्योरी की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये विचार सामाजिक बदलाव के औजार हैं।
तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के कमरों तक सीमित नहीं।
बिल्कुल नहीं। उनका अनुभव सिर्फ पढ़ाने लिखाने का नहीं है, उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को जमीनी स्तर पर आम लोगों के बीच, स्टडी सर्कल्स में, बहसों में इस्तेमाल किया है, समझाया है। तो वो जानते हैं कि एक आम पढ़ने वाले को कैपिटल समझने में दिक्कत कहाँ आती है। ये जो उनका तजुर्बा है ना, यही उन्हें मार्क्स के मुश्किल टेक्स्ट और आज के रीडर के बीच एक बढ़िया पुल बनाता है।
समझ गई। तो अब आते हैं इस गाइड पर। जैसा हमने कहा, ये कैपिटल का जो पहला और सबसे मौलिक वॉल्यूम है उसे समझने में मदद करती है।
हाँ, ये उस किताब का कोई शॉर्टकट या विकल्प नहीं है।
नहीं, बल्कि उसे पढ़ने का हौसला और समझ देती है।
चुनारा का मकसद है कि वो जो भारी भरकम अकादमिक शब्द हैं या जो बहुत उलझी हुई दार्शनिक भैंसे हैं, उनको हटाकर मार्क्स का जो असल लॉजिकल और आज भी हैरान करने वाला विश्लेषण है
उसे सामने लाया जाए।
बिल्कुल, उसे उजागर किया जाए। ये किताब उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि भाई ये दुनिया, खासकर इसकी इकोनॉमी, असल में काम कैसे करती है।
तो ये गाइड हमें किस तरह के सफर पर ले जाती है? क्या है इसका फ्लो? कहाँ से शुरू होती है बात?
यह हमें मार्क्स के तर्क के साथ बिल्कुल कदम से कदम लेकर चलती है और शुरुआत होती है पूंजीवादी समाज की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई से।
और वो क्या है?
वो है वस्तु, यानी कमोडिटी।
कमोडिटी,
कोई भी चीज जो बाजार में बिकने के लिए बनी है।
जैसे ये माइक जिस पे हम बोल रहे हैं, या हमारी चाय का कप।
हाँ बिल्कुल, या आपकी कमीज, या 1 किलो चावल, कुछ भी। फिर ये गाइड दिखाती है कि कैसे चीजों के लेन देन से पैसा, मनी सामने आता है। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, कैसे पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम न रहकर पूंजी बन जाता है।
मतलब ऐसा पैसा जिसका मकसद सिर्फ और ज्यादा पैसा बनाना है।
एग्जैक्टली, पैसा बनाने वाली मशीन, जैसा आपने कहा। और फिर आता है सबसे बड़ा राज, उस अनोखी वस्तु की खोज जिसे मार्क्स श्रम शक्ति कहते हैं,
यानी इंसान की काम करने की काबिलियत।
हाँ, यही वो खास चीज है जिसके इस्तेमाल से नया मूल्य, नया पैसा बनता है। चुनारा बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि ये जो मुनाफा है, या जिसे मार्क्स शोषण कहते हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये बाजार के सामान्य कामकाज का ही नतीजा है, ये सिस्टम की बनावट में ही शामिल है।
तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। पहला पड़ाव आपने बताया वस्तु, मूल्य और पैसा। वस्तु यानी बाजार में बिकने वाली चीज।
जी।
और हर वस्तु में दो बातें होती हैं, एक उसका उपयोग मूल्य, मतलब वो किसी ना किसी काम आती है,
जैसे जूते पहनने के काम आते हैं,
सही, या रोटी खाने के। दूसरा होता है उसका विनिमय मूल्य, मतलब उसे बाजार में दूसरी चीजों से बदला जा सकता है।
जैसे शायद एक जोड़ी जूते 20 किलो चावल के बदले मिल जाएं।
हाँ, हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये बराबरी तय कैसे होती है? एक जोड़ी जूते ठीक 20 किलो चावल के बराबर ही क्यों? यहीं पे वो मूल्य वाली बात आती है जो इन दोनों से अलग है। अच्छा, तो ये मूल्य क्या है?
देखिए, मार्क्स कहते हैं और चुनारा इसे आसान करके बताते हैं कि इन अलग अलग दिखने वाली चीजों में जो एक समान बात है जिसके आधार पर ये बदली जाती हैं, वो है उनमें लगा हुआ इंसानी श्रम,
मेहनत।
हाँ, मानवीय श्रम। किसी चीज का मूल्य इस बात से तय होता है कि उसे बनाने में समाज में औसतन कितना श्रम समय लगता है, मतलब उस समय की औसत स्किल और टेक्नोलॉजी के साथ। इसे मार्क्स कहते हैं सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय, सोशली नेसेसरी लेबर टाइम।
यानी अगर जूता बनाने में औसतन 2 घंटे लगते हैं और 20 किलो चावल उगाने में भी औसतन 2 घंटे लगते हैं, तो उनका मूल्य बराबर होगा।
मोटे तौर पर हाँ, यही श्रम मूल्य सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का आधार है। पर यहाँ एक और बात है, ठोस बनाम अमूर्त श्रम की।
वो क्या है?
जैसे दर्जी का काम या किसान का काम, ये खास तरह के काम है ठोस श्रम। ये उपयोग मूल्य बनाते हैं, जूता या चावल। लेकिन जब ये चीजें बाजार में आती हैं तो ये खास काम मायने नहीं रखता।
तो क्या मायने रखता है?
तब वो बन जाता है बस सामान्य, औसत इंसानी श्रम, अमूर्त श्रम। यही अमूर्त श्रम है जो मूल्य का सार है। थोड़ा फिलोसॉफिकल है पर जरूरी है।
ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है ना, वस्तु पूजा। वो क्या बला है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, कमोडिटी फेटिशिज्म। चुनारा समझाते हैं कि पूंजीवाद में होता क्या है कि हम जो चीजें बनाते हैं उनके उत्पादकों के बीच जो सामाजिक रिश्ता है वो छिप जाता है।
कैसे?
हमें बाजार में क्या दिखता है? हमें बस चीजों के बीच का रिश्ता दिखता है, पैसे और शर्ट का रिश्ता। हमें ये नहीं दिखता कि हमारे और उस शर्ट को बनाने वाले मजदूर के बीच क्या रिश्ता है।
सही बात है।
बाजार चीजों को एक जादुई रहस्यमय गुण दे देता है। ऐसा लगता है जैसे मूल्य चीजों में ही रहता है, ना कि उन्हें बनाने वाली इंसानी मेहनत में।
जैसे हम किसी ब्रांडेड जूते के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, ये सोचे बिना कि उसे बनाने वाले को क्या मिला होगा।
बिल्कुल, चीजें जिंदा लगने लगती हैं और इंसानी रिश्ते गायब हो जाते हैं। इसे ही मार्क्स वस्तु पूजा कहते हैं। और फिर जब व्यापार बढ़ता है तो कोई एक वस्तु, जैसे पहले सोना था अब करेंसी है, वो सार्वभौमिक समतुल्य, यूनिवर्सल इक्विवेलेंट बन जाती है।
मतलब जिससे बाकी सब चीजों का मूल्य नापा जा सके।
हाँ, और लेन देन आसान हो जाए, वो बन जाता है पैसा।
ठीक है, तो वस्तु मूल्य, वस्तु पूजा और पैसा, ये कहानी समझ आई। लेकिन अब वो अगला कदम, पैसा सिर्फ पैसा ना रहकर पूंजी कैसे बनता है, वो MCM वाला क्या चक्कर था?
हाँ, ये बहुत जरूरी पड़ाव है। देखिए, मार्क्स 2 तरह के सर्किट बताते हैं। एक है CMC,
यानी कमोडिटी मनी कमोडिटी।
हाँ, मतलब आपने कोई चीज बेची, सी, उससे पैसा मिला, एम, और उस पैसे से आपने अपनी जरूरत की कोई दूसरी चीज खरीद ली, सी। जैसे किसान ने अनाज बेचा, पैसे मिले, उससे कपड़ा खरीद लिया। यहाँ मकसद है अपनी जरूरत पूरी करना, उपभोग करना।
ठीक है, और दूसरा सर्किट
वो है MCM-, मनी कमोडिटी मोर मनी। ये पूंजी का सर्किट है। यहाँ कहानी पैसे से शुरू होती है। पूंजीपति पैसा लगाता है, उससे चीजें खरीदता है, कच्चा माल, मशीनें, और सबसे जरूरी, मजदूरों की काम करने की क्षमता, यानी श्रम शक्ति। इन सबको उत्पादन में लगाता है, नई चीजें बनाता है और उन्हें बाजार में बेचकर पहले से ज्यादा पैसा M- कमाता है। यहाँ मकसद है पैसे को बढ़ाना, मुनाफा कमाना, संचय करना।
लेकिन ये ज्यादा पैसा, ये M- वाला डैश, ये अतिरिक्त पैसा आता कहाँ से है? अगर मान लें कि सब चीजें अपने सही मूल्य पर खरीदी और बेची जा रही हैं, कोई चीटिंग नहीं हो रही।
यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। मार्क्स कहते हैं इसका राज उसे एक खास वस्तु में छुपा है जिसे पूंजीपति खरीदता है।
कौन सी वस्तु?
श्रम शक्ति, लेबर पावर। हम और आप जैसे लोगों की एक निश्चित समय के लिए काम करने की क्षमता।
ये कैसे खास है?
ये इसलिए खास है क्योंकि ये अकेली ऐसी वस्तु है जो इस्तेमाल होने पर अपने खुद के मूल्य से ज्यादा मूल्य पैदा कर सकती है।
अच्छा, ये कैसे?
देखिए, श्रम शक्ति का मूल्य कैसे तय होता है, जैसे बाकी चीजों का? उसे पैदा करने में, यानी मजदूर को जिंदा रखने, काम करने लायक बनाए रखने और उसकी अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, खाना, कपड़ा, घर वगैरह,
उनका मूल्य।
हाँ, उनका जो सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय है वही श्रम शक्ति का मूल्य है और यही हमें मजदूरी यानी वेज के रूप में मिलता है।
ठीक है, मान लिया, तो फिर ज्यादा मूल्य कहाँ से आया?
आप खेल समझिए। मान लीजिए आपकी श्रम शक्ति का मूल्य यानी आपकी एक दिन की मजदूरी 3 घंटे के श्रम के बराबर है। मतलब 3 घंटे काम करके आप इतना मूल्य पैदा कर देते हैं जितनी आपकी मजदूरी है।
ओके।
लेकिन पूंजीपति ने आपको खरीदा है पूरे 8 घंटे काम करने के लिए।
हाँ।
तो उन 8 घंटों में आप कितना मूल्य पैदा करेंगे? पूरे 8 घंटे के श्रम के बराबर।
हाँ।
इसमें से 3 घंटे का मूल्य तो आपकी मजदूरी में चला गया।
ओके।
लेकिन बाकी के 5 घंटे, वो 5 घंटे का श्रम जो आपने किया, उसका मूल्य कहाँ गया?
वो पूंजीपति के पास।
बिल्कुल, यही है वो अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू। ये वो नया मूल्य है जो मजदूर ने पैदा किया पर जिसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं मिला। ये है अवैतनिक श्रम, अनपेड लेबर।
बाप रे, मतलब मुनाफा असल में मजदूर की वो मेहनत है जिसके पैसे उसे नहीं मिले।
मार्क्स और चुन्नारा के विश्लेषण के अनुसार हाँ, यही अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के मुनाफा प्रॉफिट्स, जमींदार के लगान रेंट और बैंकर के ब्याज इंटरेस्ट का एकमात्र स्रोत है।
और ये तब भी होता है जब मजदूर को उचित मजदूरी मिल रही हो, मतलब बाजार के हिसाब से सही।
जी हाँ, चुन्नारा इस पर जोर देते हैं, ये किसी एक मालिक के लालच की बात नहीं है, ये सिस्टम की बनावट का, उसकी संरचना का हिस्सा है। शोषण यहाँ स्ट्रक्चरल है।
ये तो काफी सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। तो अब पूंजीपति इस अतिरिक्त मूल्य को, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए क्या करता है?
मार्क्स 2 मुख्य तरीके बताते हैं जिन्हें चुन्नारा समझाते हैं। पहला तरीका है निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य बढ़ाना।
वो कैसे?
सीधा साधा तरीका, काम के घंटे लंबे कर दो। अगर मजदूर यानी भुगतान वाला हिस्सा उतनी ही रहे और आप 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करा लें, तो अवैतनिक श्रम का हिस्सा 5 घंटे से बढ़कर 7 घंटे हो गया।
जैसे पुरानी फैक्ट्रियों में होता था।
हाँ, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के समय 12, 14, 16 घंटे काम कराना आम था। मजदूरों ने इसके खिलाफ लंबी लड़ाइयां लड़ी।
और दूसरा तरीका क्या है? आजकल तो काम के घंटे ज्यादातर देशों में कानून से तय हैं।
दूसरा तरीका ज्यादा परिष्कृत है, वो है सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य, रिलेटिव सरप्लस वैल्यू बढ़ाना। इसमें काम के कुल घंटे नहीं बढ़ते।
तो फिर
इसमें कोशिश होती है कि वो जो भुगतान वाला हिस्सा है ना, पेड लेबर, उसको कम कर दिया जाए।
वो कैसे मुमकिन है?
ये होता है श्रम की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, खासकर उन उद्योगों में जो मजदूरों के उपभोग की चीजें बनाते हैं, जैसे खाना, कपड़ा वगैरह। अगर नई मशीनें लगाकर या बेहतर मैनेजमेंट से ये चीजें सस्ती हो जाएं,
हाँ?
तो मजदूर को जिंदा रखने की लागत यानी उसकी श्रम शक्ति का मूल्य कम हो जाएगा। अब शायद उसे 3 घंटे के बजाय 2 घंटे के श्रम के बराबर की मजदूरी से ही काम चल जाए।
अच्छा,
तो अब 8 घंटे के काम के दिन में भुगतान वाला हिस्सा 2 घंटे रह गया और अवैतनिक हिस्सा बढ़कर 5 से 6 घंटे हो गया। देखा, काम के घंटे नहीं बढ़े पर अतिरिक्त मूल्य बढ़ गया।
वाह, ये तो बड़ी चालाकी है।
और यही वो ताकत है जो पूंजीवाद को लगातार नई टेक्नोलॉजी लाने, उत्पादन के तरीके बदलने पर मजबूर करती है। सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य की खोज।
अच्छा, यानी टेक्नोलॉजी का विकास सिर्फ हमारी भलाई के लिए नहीं होता।
मार्क्स के नजरिए से देखें तो उसका मुख्य इंजन मुनाफे की ये होड़ है। अब पूंजीपति इस बढ़े हुए मुनाफे, इस अतिरिक्त मूल्य का करता क्या है?
क्या करता है?
यही हम आते हैं पूंजी संचय, कैपिटल अक्यूमुलेशन पर। उसे इस मुनाफे का बड़ा हिस्सा वापस बिजनेस में लगाना पड़ता है।
क्यों?
मजबूरी है। हाँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो दूसरा पूंजीपति नई बेहतर मशीनें लगाकर उसे बाजार से बाहर कर देगा। तो उसे और मशीनें, जिसे मार्क्स स्थिर पूंजी या कांस्टेंट कैपिटल कहते हैं, खरीदनी पड़ती हैं, और मजदूर, जिन्हें परिवर्तनीय पूंजी या वेरिएबल कैपिटल कहते हैं, रखने पड़ते हैं, और उत्पादन का पैमाना बढ़ाना पड़ता है।
यही पूंजीवादी विकास का इंजन है।
बिल्कुल, मार्क्स मजाक में कहते हैं संचय करो संचय करो, यही मूसा और पैगंबर हैं। मतलब पूंजीपति का यही धर्म है, यही उसकी मजबूरी है।
और इस लगातार संचय का समाज पर क्या असर होता है, बड़े पैमाने पर?
मार्क्स इसे पूंजीवादी संचय का सामान्य नियम, जनरल लॉ ऑफ कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन कहते हैं। होता यह है कि पूंजीपति टेक्नोलॉजी और मशीनों, स्थिर पूंजी सी, मजदूरों, परिवर्तनीय पूंजी वी की तुलना में ज्यादा तेजी से निवेश करते हैं। इसे पूंजी की बढ़ती जैविक संरचना, राइजिंग ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल कहते हैं।
यानी मशीनें ज्यादा, मजदूर कम,
अनुपात में। हाँ, और इसका सीधा नतीजा क्या होता है?
बेरोजगारी।
सही।
टेक्नोलॉजी मजदूरों को अनावश्यक बनाती है, उन्हें विस्थापित करती है, इससे समाज में हमेशा बेरोजगार और अल्प रोजगार लोगों का एक समूह बना रहता है। मार्क्स इसे कहते हैं औद्योगिक आरक्षित सेना,
रिजर्व आर्मी।
हाँ, चिनारा समझाते हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम के काम करने के लिए जरूरी है। ये जो बेरोजगारों की फौज है, इसका होना ही काम कर रहे लोगों की मजदूरी पर दबाव डालता है, उनकी मोल भाव की ताकत कम करता है। और क्या होता है संचय से?
दो और चीजें होती हैं। एक, पूंजी का संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक एक पूंजीपति के पास ज्यादा पूंजी जमा होती जाती है। दूसरा, पूंजी का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, यानी कंपटीशन में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं या खत्म कर देती हैं।
जैसे आजकल हम देखते हैं कुछ ही बड़ी कंपनियों का हर सेक्टर में दबदबा बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल, ये एकाधिकार और अल्पाधिकार की प्रवृत्ति पूंजी संचय के तर्क में ही निहित है।
ये सब सुनकर मन में सवाल आता है कि ये जो पूरा सिस्टम है पूंजीवाद का, ये शुरू कैसे हुआ? क्या ये हमेशा से था या किसी खास तरीके से बनाया गया?
बहुत अच्छा सवाल है। चुनारा मार्क्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर रोशनी डालते हैं, जिसे मार्क्स कहते हैं तथाकथित आदिम संचय,
सो कॉल्ड प्रिमिटिव एक्युमुलेशन। तथाकथित मतलब मार्क्स इसे मानते नहीं थे।
मार्क्स उस कहानी को नहीं मानते थे जो पूंजीवाद के समर्थक सुनाते हैं, कि कुछ लोग बड़े मेहनती और बचाने वाले थे, उन्होंने धीरे धीरे पैसा जमा किया और पूंजीपति बन गए, और बाकी लोग आलसी थे इसलिए मजदूर बन गए।
अच्छा, तो असल कहानी क्या है?
मार्क्स दिखाते हैं कि पूंजीवाद शुरू होने की जो शर्तें थीं, यानी एक तरफ उत्पादन के साधनों, जमीन, फैक्ट्री के मालिक, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के सिवा कुछ नहीं, वो शांति से नहीं बनी, वो बनी जबरदस्ती से, हिंसा से, चोरी से।
आदिम संचय मतलब
शुरुआत की लूट
एक तरह से। हाँ, ये वो ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसने किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया, कारीगरों को उनके औजारों से वंचित किया और उन्हें मजदूर बनने पर मजबूर किया। चुनारा मार्क्स के उदाहरणों को सामने लाते हैं।
जैसे?
जैसे इंग्लैंड में बाड़बंदी एनक्लोजर्स, जहां किसानों की साझा जमीनों को छीनकर उन्हें शहरों की तरफ ढकेल दिया गया। जैसे उपनिवेशों की भयानक लूट।
भारत की लूट भी?
बिल्कुल, दास व्यापार, जिसमें लाखों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया। सरकारी कर्जे, टैक्स का बोझ, इन सब हिंसक तरीकों से वो शुरुआती पूंजी जमा हुई और वो स्वतंत्र मजदूरों की फौज तैयार हुई, जिनके बिना पूंजीवाद शुरू ही नहीं हो सकता था।
यानी पूंजीवाद का जन्म खून और आंसुओं में डूबा हुआ है,
मार्क्स का यही कहना है। और ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि पूंजीवाद कोई प्राकृतिक या हमेशा से चली आ रही व्यवस्था नहीं है, इसका एक खास और अक्सर क्रूर ऐतिहासिक जन्म हुआ है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जोसेफ चुनारा की इस गाइड से मार्क्स के जरिए पूंजीवाद के बारे में वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए?
हाँ, कई बातें। मेरा ख्याल से पहली और शायद सबसे बुनियादी बात यह है कि ये जो सिस्टम है, ये कोई रहस्यमयी या अराजक ताकत नहीं है। इसका एक अपना आंतरिक तर्क है जिसे समझा जा सकता है, और मुनाफा इस तर्क के केंद्र में है, और वो मुनाफा आता है शोषण से,
यानी मजदूर के अवैतनिक श्रम से।
ये सिस्टम की बनावट में ही है।
बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, जैसा आपने पहले भी इशारा किया कि ये सिस्टम बहुत डायनामिक है, गतिशील है, ये लगातार बदलता है, नई टेक्नोलॉजी लाता है, उत्पादन बढ़ाता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये अपने अंदर गहरे विरोधाभास भी पाले हुए है। ये तरक्की तो करता है, पर साथ ही असमानता, बेरोजगारी और आर्थिक संकट भी पैदा करता जाता है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं।
भारत में हम ये रोज देखते हैं, एक तरफ अभूतपूर्व अमीरी, दूसरी तरफ उतनी ही गहरी गरीबी और असुरक्षा। सही कहा। तीसरी बात है वर्ग, क्लास और वर्ग संघर्ष की केंद्रीयता। मार्क्स के लिए समाज में मुख्य विभाजन उत्पादन के साधनों के मालिकाने को लेकर है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, और इनके हित आपस में टकराते हैं। चौथी बात वो वस्तु पूजा वाली, कैसे ये सिस्टम न सिर्फ हमारा शरीर निचोड़ता है बल्कि हमारी सोच को भी ढालता है। हमें अपनी ही बनाई दुनिया अजनबी लगने लगती है, हम चीजों के रिश्तों में खो जाते हैं और इंसानी रिश्तों को भूल जाते हैं।
ये अलगाव वाली बात भी है।
हाँ, और शायद आखिरी पर बहुत जरूरी बात ये कि पूंजीवाद कोई शाश्वत हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। इसका एक इतिहास है, ये बदला है और शायद आगे भी बदलेगा। मार्क्स का विश्लेषण हमें इसी संभावना की ओर इशारा करता है।
तो चुनारा की गाइड हमें मार्क्स के इन विचारों को आज के संदर्भ में समझने में मदद करती है, चाहे वो आजकल की गिग इकोनॉमी हो, फाइनेंस का बढ़ता दबदबा हो या दुनिया भर में बढ़ती असमानता।
बिल्कुल, ये सिर्फ 19वीं सदी का विश्लेषण नहीं है। अब चुनारा की किताब से कुछ ऐसी बातें जो खास तौर पर याद रह जाती हैं, कोई नुकीले विचार?
हाँ, चुनारा मार्क्स के विचारों का सार बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। जैसे एक मुख्य विचार ये निकलता है
कि मुनाफे का असली राज बाजार में खरीद फरोख्त की चालाकी में नहीं, बल्कि फैक्ट्री, खेत या ऑफिस के अंदर छुपा है। ये इंसान की काम करने की वो अनोखी क्षमता है जो खुद को बनाए रखने की लागत से ज्यादा मूल्य पैदा करती है, और यही अतिरिक्त मूल्य, यही अवैतनिक श्रम पूंजीवादी मुनाफे का एकमात्र स्रोत है।
ये सीधे शोषण के तंत्र पर उंगली रखता है।
हाँ, और एक और बात, पूंजीवाद सिर्फ चीजों का ढेर नहीं है, बल्कि लोगों के बीच का एक सामाजिक संबंध है। वस्तु पूजा हमें दिखाती है कि कैसे ये सिस्टम हमें अपनी ही मेहनत के फल को चीजों की एक रहस्यमयी ताकत के रूप में देखने पर मजबूर करता है और कीमत के पीछे छुपे इंसानी शोषण को छुपा देता है।
ये विचारधारा के स्तर पर कैसे काम करता है ये बताता है।
और ये वाला भी, संचय करो संचय करो कि जो अंतहीन दौड़ है वही पूंजीवाद का निर्णायक नियम है। कंपटीशन हर पूंजीपति को मजबूर करता है कि वो मुनाफे को वापस नई टेक्नोलॉजी और विस्तार में लगाए। इससे एक ऐसा सिस्टम बनता है जो लगातार उत्पादन में क्रांति तो लाता है, पर साथ ही असमानता, बेरोजगारी और संकट भी पैदा करता है।
ये इसकी गतिशील और विरोधाभासी प्रकृति को दिखाता है।
और आखिर में जो शायद इस गाइड का मकसद बताता है, कैपिटल पढ़ना सिर्फ इतिहास को समझने की कोई अकादमिक कसरत नहीं है, ये उन विश्लेषणात्मक औजारों को हासिल करने के बारे में है जिनसे हम उस दुनिया को समझ सकें जिसमें हम आज रहते हैं, 2008 के संकट से लेकर गिग इकोनॉमी तक, और आखिरकार इसे बदलने के संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर सकें।
ये सारे विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने आसपास जो आर्थिक घटनाएं देखते हैं उन्हें कैसे समझें।
सही कहा। अच्छा, तो ये सब जो भारी भरकम विचार हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या हम इन्हें किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, मुझे लगता है कई तरीकों से। पहला तो ये कि हम जो आर्थिक खबरें पढ़ते या सुनते हैं उन्हें एक आलोचनात्मक नजर से देख सकते हैं।
जैसे?
जैसे जब हम सुनते हैं श्रम बाजार में लचीलापन लाने की बात, तो हम सोच सकते हैं कि कहीं इसका मतलब मजदूरों की ताकत कम करके शोषण की दर बढ़ाना तो नहीं।
या जब कोई कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा दिखाती है और साथ ही हजारों लोगों को नौकरी से निकाल देती है,
तो हम समझ सकते हैं कि ये शायद सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने का उदाहरण है, कम मजदूरों से ज्यादा काम लेकर मुनाफा बढ़ाना।
दूसरा, हम अपने काम की जगह को, अपने वर्कप्लेस को शायद बेहतर समझ सकते हैं। वो जो अक्सर महसूस होता है ना कि कम पैसे मिल रहे हैं, काम का बोझ ज्यादा है, हमारे हाथ में कंट्रोल कम है।
हाँ, उन भावनाओं को एक सैद्धांतिक आधार मिल सकता है। हम सोच सकते हैं कि हमारे काम के दिन में कितना हिस्सा हमारी मजदूरी के लिए है और कितना अवैतनिक है।
तीसरा, जो लोग सामाजिक या राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, उनके लिए ये विश्लेषण उस सिस्टम को समझने में मदद करता है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। ये बताता है कि ट्रेड यूनियन क्यों जरूरी है, या क्यों सिर्फ ऊपरी बदलाव काफी नहीं बल्कि बुनियादी संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। और शायद सबसे अहम, ये हमें दुनिया को देखने का एक समग्र नजरिया देता है। हम अलग अलग घटनाओं को बिखरावा देखने के बजाय उन्हें पूंजी के तर्क से जुड़े हुए देख सकते हैं और उन विचारों पर सवाल उठा सकते हैं जो पूंजीवाद को एकमात्र संभव या प्राकृतिक व्यवस्था बताते हैं।
यानी ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है बल्कि दुनिया को देखने का एक चश्मा है।
बिल्कुल।
तो इस तोरे बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि ये जो आर्थिक व्यवस्था है जिसमें हम जीते हैं, ये कोई अनदेखी समझ से परे की ताकत नहीं है। ये इंसानी रिश्तों का एक खास ढांचा है जिसका अपना एक तर्क है जो शोषण पर आधारित है और जिसे समझा जा सकता है और शायद चुनौती भी दी जा सकती है। जोसेफ चुनारा की गाइड मार्क्स की कैपिटल के उस भारी भरकम डरावने आवरण को हटाकर हमें वो मुख्य विश्लेषणात्मक औजार देते हैं जिनसे हम दुनिया को एक आलोचनात्मक नजर से देख सकें।
हाँ, और मेरे लिए तीन बातें खास तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, मुनाफा शोषण से आता है, मजदूर वर्ग के अवैतनिक श्रम से। दूसरी, पूंजीवाद अपनी प्रकृति में ही विरोधाभासी है। इसकी जबरदस्त उत्पादन क्षमता, इसकी असमानता, बेरोजगारी और संकट पैदा करने की प्रवृत्ति से अलग नहीं की जा सकती। और तीसरी, कि मार्क्स का विश्लेषण सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि मुक्ति का एक औजार भी हो सकता है। सिस्टम को समझना उसे बदलने की दिशा में पहला कदम है।
चुनारा की गाइड की खासियत यही है कि वो अकादमिक स्पष्टता को एक एक्टिविस्ट के जुनून से जोड़ती है। वो मार्क्स के विचारों को यूनिवर्सिटी की धूल भरी अलमारियों से निकालकर आम लोगों के हाथों में वापस रखती है जो अपनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।